ओम शांति। आदरणीय मृत्युंजय भाई जी का हम सभी की ओर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय भाई साहब का स्वरूप बाप समान विश्व में प्रत्यक्षता कराने वाली आप विशेष एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। आप ब्रह्मा कुमारी के कार्यकारी सचिव हैं, आप अध्यक्ष हैं शिक्षा प्रभाग, आप डायरेक्टर भी हैं क्लीन द माइंड एंड ग्रीन द अर्थ प्रोजेक्ट का, साथ में आप राष्ट्रीय संयोजक लिविंग वैल्यूज एंड एजुकेशन प्रोग्राम्स के हैं। आपने निर्माण किया है हु एम आई, 3D शो, लेजर शो आदि के आप संचालक हैं, जो बहुत ही अनेक आत्माओं को बहुत सुंदर रीति से यहाँ आकर्षण करती हैं। आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में 55 वर्षों से समर्पित रूप से इस मुख्यालय में अपनी बहुत बहुत अनमोल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 1968 में आपको बेंगलुरु कर्नाटक से ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ और साथ ही आपको इसके प्रति इतनी रुचि हुई कि आपने अपनी बहुत कार्यात्मक सेवाएं देते हुए आज संस्था को बहुत बहुत ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। आप बेहद ही कर्तव्य परायण, दृढ़ संकल्पधारी, लगनशील व्यक्तित्व हैं। 50 से अधिक देशों में आपने भ्रमण कर अपने प्रभावशाली वक्तव्यों द्वारा मूल्यवान सेवाएं प्रदान किए हैं, कर रहे हैं। साथ ही विशेष रूप से आपके ही द्वारा, आपकी प्रेरणा से वैल्यू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअलिटी के विषय पर ब्रह्मा कुमारी के साथ विभिन्न विश्वविद्यालयों का MOU समझौता करते हुए जो बहुत सारे डिग्री कोर्सेज चल रहे हैं, BSc, MSc, डिप्लोमा, PG डिप्लोमा आदि के, जिसमें लाखों स्टूडेंट्स और व्यक्ति अपना भाग्य बना रहे हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान के प्रति गहनता से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। आदरणीय भाई साहब, आपको बहुत सारे सम्मानों से भी नेशनल तथा इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 2003 में मोरारजी देसाई इंटरनेशनल अवार्ड के अंतर्गत आपको 30 इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस से सम्मानित किया गया। 2009 में KG फाउंडेशन द्वारा आपको डायनामिक इंडियन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2013 में पब्लिक रिलेशन ऑफ इंडिया द्वारा हॉल ऑफ फेम का अवार्ड तथा 2019 में रांची यूनिवर्सिटी द्वारा आपको डॉक्टर ऑफ फिलोसफी की डिग्री से भी सम्मानित किया गया है। तो ऐसे अनेक अनेक मूल्यवान सेवाएं देते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और बहुत सारे मंत्रियों की, ऐसे VVIP की सेवाओं द्वारा आप इस ईश्वरी विश्वविद्यालय को बहुत श्रेष्ठता की ओर ले जा रहे हैं। तो ऐसे आदरणीय मृत्युंजय भाई जी से हम सुनेंगे। आपका आज का विषय है वर्तमान समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थ की विधि। आदरणीय मृत्युंजय भाई,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ऊंचते ऊंच बाप की गोद में सदा लवलीन रहने वाले, ऊंचते ऊंच स्थान परंधाम की यात्रा करने वाले, ऊंची से ऊंचे शिक्षा, संसार में इससे बढ़िया शिक्षा कोई हो नहीं सकता है। सामान्य मानव को देव मानव बनाने का शिक्षा बाबा हम बच्चों को दिया है। दुनिया में कितने भी सिद्ध प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी भी इतनी ऊंची शिक्षा नहीं दे सकते है। ऐसी शिक्षा स्वयं शिक्षक बन करके बाबा ने हमको शिक्षा भी दिया और स्वयं बाप बन करके हम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, स्वयं सद्गुरु बनकर के हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऐसे सदा बाबा की लव में लीन रहने वाले लवलीन आत्माओं को प्रातःकालीन प्रणाम, ओम शांति, नमस्ते। अभी के सबसे जोन में सबसे बड़े जोन ईस्टर्न जोन है। जैसे बाबा बड़ा है ऐसे जोन भी बड़ा है। सेवा बाबा का महत्वपूर्ण सेवा है, ऐसे आप सबका भी सेवा भी अति महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा यादगार भी ईस्ट में होता है, क्योंकि सबसे बड़ा ब्रह्मपुत्र नदी ईस्ट में है और सबसे बड़ा लंबे नदी भारत में गंगा नदी है, वो भी बंगाल में जाकर के बे ऑफ बंगाल में समावेश हो जाते सागर में नदी भी। ऐसे आप सभी बाबा के गोद में समावेश हो जाना चाहिए। कोई भी देहाभिमान की दुनिया अपनी तरफ आकर्षित ना करे, वो आकर्षित करना ही मना हमको कोई ना कोई कमजोरी इनविटेशन देना उसको। इसके लिए इस समय में हम पुरुषार्थ में, बाबा कहते केवल तीव्र पुरुषार्थ नहीं, बाबा मम्मा कब कहते थे, बाबा ने मम्मा एक बार रियलाइज किया इसी बात का, उसको उसी स्वरूप का धारण करना, कमजोरी को नहीं, कमी को नहीं, दूसरों के कमी को नहीं। बाबा ने अपने मानतम का अनुभव कराया, अनुभव करते हुए दादी जी मम्मा मातेश्वरी जगदम्बा माँ सरस्वती ने उसको अपने जीवन में उतार के बाप समान 1965 में ही बाबा समान बन गए, अव्यक्त हुए और बाप समान बन करके सूक्ष्म रूप में उपस्थित होकर के आज भी हम सबको प्रेरणा दे रहे हैं। उसकी हम लोग वर्जिन्स हैं, उनकी सुपुत्र है, सुपुत्रिया है बाबा मामा की, विशेष करके साकार में भी। इसके लिए ईस्टर्न जोन माना सबको ईस्ट अर्थात ईश्वर को दर्शाने वाले, सूर्य को दर्शाने वाले अर्थात ज्ञान का दर्शाने वाले अर्थात सबको रोशनी देने वाले, क्योंकि ईस्ट से ही सूर्योदय होता है। ऐसे आप सभी कौन है? रोशनी देने वाले, प्रकाश देने वाले, शक्ति देने वाले, वरदान देने वाले और होपलेस दुनिया को होप करने वाले, ऐसा है ना? कौन कौन ऐसा समझते हैं? हाथ खड़ा करें। थोड़े लोग हाथ खड़ा करते हैं। सबको कुछ संकेत है, संकोच है, माने हिम्मत नहीं है, वह अनुभव कमी है, वह इनका अनुभव कमी का क्या कारण हो सकता है? भाई लोग कौन कौन समझते हैं इस दुनिया को होपलेस दुनिया में होप करने वाले, कमजोर दुनिया की शक्तिशाली बनाने वाले, भारत को भारत गुरु बनाने वाले बनाएंगे? अच्छा सोच रहे। आज की मुरली का ही बाबा का महावाक्य वरदान शिक्षा और सभी याद करो तो सदा बाबा के अंदर याद करना कठिन होना चाहिए और याद करना सहज होना चाहिए। जिसको सहज समझते बाबा को याद करना वो हाथ खड़ा करें। वाह वाह, जोर से ताली बजाओ। क्यों? दुनिया में अच्छी चीज को याद करना सहज होना चाहिए, बुरी चीज को, कमजोर चीज को, दुखदायी चीज को, पाप और निंदा में डुबोने वाले चीज को भूलना चाहिए। कई बार आजकल कलयुग क्या हुआ, कलयुग कैसे बना, हमने कमजोर चीज को याद करते गए, कमजोर चीज को अपना बनाते गए, कमजोर चीज को कल्चर में अडॉप्ट कर दिया। हमारा संस्कृति है, हमारा परंपरा है, हमारा इतिहास है, इसको जोड़ करके कमजोरी को, पाप को अपने साथ में जोड़ दिया, उसी कारण उसको सहज समझते हैं। परंतु वो सहज नहीं है, वो कठिन चीज है, कमजोर चीज है, पाप की चीज है, दुखदायी चीज है। ऐसे दुखदायी दुनिया को हम लोगों ने अपने बनाया, परंतु अभी बाबा सुखदायी, शांतिमय और हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट बाबा ने हम बच्चों को इतने बड़े हाईएस्ट परंधाम से इधर आता है पढ़ाने के लिए। परंधाम हमारा इतना ऊंचे से ऊंचे धाम है, पांच ऊंचे से ऊंचे धाम याद करना। बाबा कहते हैं एक अंक में मुक्ति, एक अंक में जीवन मुक्ति। आपको देखते ही मुक्ति धाम याद आवे, परंधाम याद आए, बाबा याद आए, वर्षा याद आए, शक्ति याद आए, नया दुनिया याद आए। ऐसी याद दिलाने वाले आत्मा बनना चाहिए। परंतु इसके बजाय देहाभिमान याद आवे, दूसरी बातें याद आवे, पाप की दुनिया याद आवे, ये कमजोरी की दुनिया याद नहीं दिलावे। परंतु ऐसी श्रेष्ठ आत्मा बन करके, पवित्र आत्मा बन करके, देवता बन करके, फरिश्ता बन करके, बाप समान बन करके, पुरुषार्थ देखते हुए लोगों को अनुभव होना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी को देखते ही सत्यवान याद आता है, त्याग याद आता है, तपस्या याद आता है, और उनकी दो कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस डे व स्वतंत्र भारत की कंट्रीब्यूशन याद आता है। ऐसे बाप को नाम उच्चारण करते ही सारे विश्व के पिता, सारे विश्व के कल्याण करने वाले, विश्व को मुक्ति देने वाले, विश्व में नया दुनिया स्थापित करने वाले, याद सहज होना चाहिए, कठिन होना चाहिए? हाँ, सहज होना चाहिए ना। इसके लिए याद करना माना सहज होता है। स्पेशली इस समय में अभी तो सारी दुनिया का एक तरफ है, बाबा एक तरफ है। बाबा मुक्ति धाम में ले जाना चाहता है दुनिया, इस दुनिया में और भी स्थापना के कार्य करना चाहता है, और भी बसाना चाहता है, और भी विस्तार करना चाहता है। परंतु विस्तार को बाबा ने सार रूप में हम बच्चों को वापस घर ले जाने के लिए, मुक्ति धाम में ले जाने के लिए, अनेक बंधनों से दूर करने के लिए पुरुषार्थ, अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा कहना भी सही नहीं है। हमको एक सेकंड में पुरुषार्थ से पार होकर के परंधाम निवासी है ये अनुभव कराना चाहते बाबा। और बच्चों के नाम लेते हुए उसका स्वरूप बाबा ने बच्चों को अपने आदि अनादि गुणों को याद दिलाया, आपको देवता बनाया, फरिश्ता बनाया इस संगम युग में, और भविष्य में देवता बनेंगे। वो दोनों गुण दिखाई देना चाहिए, तब तो लोगों को आकर्षित होगा, तब तो लोगों को विश्वास होगा, तब तो लोगों को खुद में आपके प्रति भी विश्वास होगा, साथ साथ में बाप के प्रति भी विश्वास होगा। उसके सिवाय हम किसी दूसरी तरफ आकर्षित करें उसका कोई फायदा नहीं, समय वेस्ट है। इसके लिए बाबा कहते हैं समय बहुत कम है। अचानक 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 बाबा ने बहुत बार अनेक मुरली में रिपीट किया, अभी दुनिया में उसका वातावरण दिखाई दे रहा है। अचानक कुछ भी हो सकता है, बहुत बातों में उथल पुथल हो सकता है। इसके लिए ब्राह्मणों में भी अचानक पुरुषार्थ हम करेंगे ऐसा नहीं है, अचानक नहीं, सिद्धि स्वरूप। वास्तव में बाबा ने कहा आपकी वाणी में वरदान का अनुभूति कर रहे हैं, दृष्टि में नया सृष्टि का अनुभव होना चाहिए, संकल्प में सिद्धि का अनुभव होना चाहिए, और नवीनता, इन सभी बातों में नवीनता अनुभव होना चाहिए, पुरानी दुनिया भूलना चाहिए। देखने ऐसे अनुभव कराने के लिए बाबा ने हम बच्चों को बहुत नई बातें सुनाया, ऐसी नई बातों का याद दिलाना है हमारा कर्तव्य है। नवीन जीवन जीने की कला, दुनिया में ब्रह्म कुमार जीवन मना एक नया जीवन है, नया आंदोलन है, नया क्रांतिकारी जीवन है। ऐसी क्रांतिकारी कौन सी क्रांति है? दुनिया में हिंसा करने का क्रांति नहीं है, शांति का क्रांति, पवित्रता का क्रांति, सद्भावना की क्रांति। ऐसी सद्भावना, एक एक आत्मा को कितनी आत्मा तपस्या करेंगे, उसका वायुमंडल में कितनी वातावरण बनेगा, शुद्धिकरण होगा, पवित्रीकरण होगा, पावन होगा, पूज्य बनेगा, इतना अनुभूति करने के लिए अभी बाबा ने ईश्वरी परिवार को इतनी विस्तार किया। जब हम लोगों ने आया ज्ञान में, एक ही एक सेंटर साउथ इंडिया में था, अभी तो गांव गांव में हो रहे। तो परसों हमने देखा हमारा देश की राष्ट्रपति मैडम उधर लखनऊ में आए थे, गवर्नर भी थे, मुख्यमंत्री भी जी थे, मैंने कभी भी ब्राह्मणों को वो दोनों वर्णन करना व उसका एक्नॉलेज करना और उनकी सेवा को पहचानना इतना नहीं था। मैंने उसी दिन देखा, एक ही दिन में इतनी परिवर्तन देखा मैंने। ब्राह्मण इनकी सेंटर्स आजकल गांव गांव में है, पहले शहरों में था, अभी गांव गांव में पूरे जा रहे। इसका मतलब ये है बाबा का कार्य, बाबा ने 1936-37 में, उसके बाद में कराची से शिफ्ट होकर के माउंट आबू जब आया, माउंट आबू ने बाबा ने निर्देशन दिया सेवा केंद्रों को बहुत बड़े बड़े शहरों में खोलने के लिए। तब बाबा कहते थे बच्चे आगे चल करके गांव गांव में सेंटर होगा, गली गली में सेंटर होगा, एक एक स्थान में 100-100 सेंटर होगा, बाबा ने कहा था। अभी वो सभी बातें सिद्ध हो गया। मैंने देखता हूँ अपने लौकिक स्थान बेंगलोर में, देखता हूँ आज मोर देन 100 सेंटर केवल एक दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट में। पहले तो एक सेंटर के लिए मुश्किल था, किसी को जाकर के ज्ञान सुनाते तो एक्सेप्ट नहीं करते थे, गाली देते थे और मना करते थे। अभी आने के लिए निमंत्रण देते, आने के लिए आह्वान देते, आने के लिए आने जाने के टिकट देते और भी व्यवस्था करते। मेरे कहने की भाव ये है बाबा का महावाक्य सिद्ध होते जा रहे। अभी वो सिद्ध हमको करना है, एक एक ब्राह्मण अवतरित आत्मा के रूप में दिखाना चाहिए। एक एक ब्राह्मण आत्माएं विश्व कल्याणकारी का अनुभव होना चाहिए। एक एक ब्राह्मण कुमार कुमारिया एक फरिश्ता कुमार कुमारिया ये अनुभव करना चाहिए। उनको देख करके इस दुनिया नीरस जीवन जीना हो तो इसी जीवन ठीक है, जीवन जीना है तो इसमें सहारा है, जीवन जीना है तो ऐसे जीवन जीना, नहीं तो दुनिया क्या है, दुख दाम है। ऐसा जीवन जीने के लिए प्रेरणा स्रोत केवल बाबा ही नहीं है, आप सभी प्रेरणा स्रोत है, आप सभी मार्गदर्शक है, आप सभी शक्ति वर्धक है, आप सभी होप में दिलाने वाले, होपलेस दुनिया में होप को पैदा करने वाले। ऐसी दुनिया बनाने के लिए बाबा ने हर एक ब्राह्मणों को निमित्त बनाया। ऐसी समय पर मैं देखता हूँ अभी 2-3 मास के अंतराल में मैं देखता हूँ बड़े बड़े लोग अभी ईश्वरीय विज्ञान की शिक्षा को स्वीकार भी करते हैं, साथ साथ में इसका अनुकरण करने के लिए भी खुद भी इच्छा प्रकट करते हैं। मेरे अपने अनुभव में मैं देखता हूँ इसी 2 मास के अंतराल में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी आकर के बोले भैया इतना भव्य भवन बना है। मैंने कहा था सर आप सबकी ब्लेसिंग से, नहीं मैं ब्लेसिंग देने के लिए नहीं आया हूँ, ब्लेसिंग लेने के लिए आया हूँ। कितनी बड़ी बात है, भले उसकी नम्रता है उनकी सत्यता है परंतु उनके अंदर विनम्रता इतनी पूर। साथ में कहते हैं मैं गेस्ट बन करके नहीं आया हूँ, मैं आपका बन करके आया हूँ, आपके परिवार का बन के आया हूँ। ये कितनी बड़ी बात है उनके अंदर ये रियलाइजेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये ताकत किसने दिया? बाबा ने दिया। साथ साथ में उन्होंने ये कहा मैं देश के विदेशों में भ्रमण करता रहता हूँ, मैं एयरपोर्ट में देखो परिवार के भाई बहने मिलता है, जहाँ लेक्चर देने के लिए मैं मीटिंग में जाता हूँ वहाँ भी लोग ग्रीटिंग देने के लिए आते हैं, और भी अन्य स्थान पर मैं मिलता है विदेशों में भी। इससे यह सिद्ध होता है आपकी ताकत कितनी है, आपकी कल्चरल इम्पैक्ट कितनी है, आपकी भारत की महिमा कितनी है। आप लोगों ने एक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम कर रहे हो, इस बात को इन्होंने स्वीकार किया, ये तो ये अच्छी बात है। ऐसे ही देखा जाए अभी भले थाली बजाओ हमारे लिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर के लिए। अभी देश की यशस्वी प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार किया, उससे पूर्व में आप सबको मालूम है वर्तमान समय का द्रौपदी मुर्मू जी इस देश का राष्ट्रपति मैडम है, उन्होंने हर मास में लगभग एक दौर सरकारी कार्य के हिसाब से किसी स्टेट में जाता है तो ब्राह्मणों का परिवार से मिलती है, वो कोई प्रोग्राम अटेंड करते हैं, उसका उद्घाटन करते हैं, राष्ट्रपति आना मना सारी प्रोटोकॉल सारी स्टेट की मशीनरी लग जाता है। इससे यह सिद्ध होता है, बाबा ने एक बार कहा था, जब डॉक्टर चन्ना रेड्डी जी गवर्नर थे राजस्थान का, उन दिनों में दादी प्रकाश मणि जी, मोहिनी बहन, अन्य सभी दादी, रतनमणि दादी सभी थे, हम लोग मिले थे। मिलने के बाद में उसकी स्त्री अलग है, माउंट आबू में आए तो ओम शांति भवन में बाबा से मिले, दादी ने सारी समाचार सुनाए बाबा, अव्यक्त बाबा को। बाबा ने ऐसा करके दृष्टि दिया, दृष्टि देने के बाद में एक दिन राष्ट्रपति भवन भी आपको मिलेगा बोला। बाबा ने उन दिनों में वो बात सच हो गया, राष्ट्रपति भवन ब्रह्म कुमार को, एक ब्रह्म कुमारी बहन को मिला, उनको राष्ट्रपति बना दिया बाबा ने। वह उनकी वो उनके अंदर वो संस्कार है, साथ में वो फीलिंग है, मुझे किसने बनाया, देश की जनता बनाया सही है, परंतु उनको वरदान किसने दिया, बाबा ने दिया। वो अनुभव उसको जहां भी जाते हैं उसका अपनी तरीके से शेयर करते हैं, देश की प्रधानमंत्री भी अपनी तरीके से शेयर करते हैं। कुछ ही दिन पूर्व में होम मिनिस्टर इधर आए थे, अमित शाह भी, उन्होंने, मैंने पहले बार मैं आया हूँ यहाँ का वातावरण को देख करके खुशी और शांति का अनुभव करता हूँ, ये अनुभव करके किसने, बाबा ने अनुभव कराया, अनुभव के आधार से मैंने कभी भाषण किया नहीं, किताब पढ़ा नहीं है, ब्रह्म कुमारी इसका बारे में परिचित नहीं है, मैं सीधा हेडक्वार्टर्स में आया हूँ, इधर थोड़े क्षण में मेरे को ये फीलिंग किया, अनुभव किया, शांति का स्थल है, योग स्थल है, पवित्र स्थल है, ये स्थल ऑटोमेटिकली उनको एक्सपीरियंस दिलाता है। इसके लिए आप कहीं भी हो, किधर भी हो, जंगल में हो और शहर में हो, ये अनुभव कराने का ताकत है तो इस चीज ईश्वरी परिवार के अंदर है, परंतु इसको और भी बढ़ाने की आवश्यकता है, और भी इसमें स्वच्छता की आवश्यकता है, सत्यता की आवश्यकता है, पारदर्शिता की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को बाबा की शिक्षा के अनुरूप हम लोग अपने आप को मोल्ड हो जाएंगे, हमको गोल्डन एज इधर ही दिखाई देगा, एक एक आत्मा का गोल्डन एज दिखाई देगा, नहीं देगा हाँ। इसके लिए आप सबको इस समय में सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, ब्रह्मन परिवार का है। सुनने वाले भले अच्छे अच्छे लीडर्स है, नामी ग्रामी है, प्रसिद्ध है, वो प्रसिद्ध थोड़ा टाइम के लिए, हमारा हिस्ट्री कितने साल के लिए, कितने साल तक हमारा हिस्ट्री चलता है, 2500 साल तक हिस्ट्री चलता है, 2500 राज्य चलता है, 2500 साल तक हमारा खुद के राज्य चलता है, सत्य त्रेता युग में, द्वापर कलयुग में हिस्ट्री बन जाते, वो हिस्ट्री का भारत बनाने वाले आप सब है। ऐसे हिस्ट्री बनाने वाले भाई बहनों को बाबा ने कहाँ रखा, अपने नयनों में रखा है। सारी दुनिया देवताओं को पूजा करता है, परंतु देवता बनने वाले आप सबको, हम सबको बाबा ने कहा रखा, अपने नयनों ने समाया, अपने श्रीमुख से मनुष्य आत्माएं देवताओं को वर्णन करते, पूजन करते, गायन करते, परंतु बाबा ने गायन योग्य बनाने वाले बच्चों को अपना बना करके खुद उनकी महिमा करते। अमृत वेले से लेकर के बाबा ने किसको याद करते, बच्चों को याद करते। बच्चे हम लोग कभी आलस्य के वश होकर के, वह अलबेला बन करके, वह नेग्लिजेंस होकर के भले सोए हुए उनको, परंतु फिर भी बाबा अपना नियम अनुसार बच्चों को अमृत वेले वरदान देता है, सकाश देता है, शक्ति देता है और अनेक प्रकार की शिक्षा याद दिलाता है। इसके लिए हमको अभी आलस्य से मुक्त होना चाहिए। अभी हम लोग वास्तविक रीति से नियम अनुसार बाबा ने श्रीमत के अनुसार हम सबको सदा योगी, निरंतर योगी, कुछ समय के योगी, कुछ काल के योगी, खंडित योगी, ऐसा नहीं, निरंतर योगी बनना चाहिए। तो ये समय की पुकार है, इसके लिए निरंतर योगी हो गया वही ज्ञान स्वरूप बनेगा, योग स्वरूप बनेगा, शक्ति स्वरूप बनेगा, ज्वालामुखी बनेगा। और ज्वालामुखी के सामने कि कोई भी प्रकार की माया वो तमो प्रधान की दुनिया का अंश हो, वो सब समाप्त हो जाएगा। वो सब आपको टच भी नहीं कर सकते। ऐसी दुनिया को तिलांजलि दे करके, आपको तिलकधारी बन करके, नष्ट मोही बन करके बाप समान बन जाएंगे। ऐसी बाप समान बनने वाले बच्चों को बाबा क्या कहता है, उनको प्रणाम करता है खुद बाबा। इस समय में हमको ऐसी योग्य बच्चे बना रहा है, परंतु इसके लिए हम अपने आप को चेक करना चाहिए, अपने संस्कारों को चेक करना चाहिए, अपने कमजोरियों को चेक करके समर्पित करना। जीवन समर्पित करना बड़ी बात नहीं है, कमजोरी को समर्पित करना, कमी को समर्पित करके बाबा को बाप समान मन। इस दिशा में ईस्टर्न जोन सबसे आगे आना चाहिए, जैसे बड़ा जोन है। हाँ, जोर से ताली बजाओ अपने को। क्यों? सबसे ज्यादा देवी देवताओं का पूजा किधर होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। होता नहीं होता है वेस्ट में, ईस्ट में होता है। अरे वेस्ट बंगाल हो कहते हैं, ईस्ट में बाबा का अवतरण भी ईस्ट में हुआ था और बाबा का प्रत्यक्षता भी ईस्ट में होना चाहिए। परंतु ईस्ट तब होगा एक एक ब्राह्मण आत्मा। जैसे भी जोन के हिसाब से मैं समझता हूँ, सबसे बड़ा जोन कौन सा है? ईस्टर्न जोन। इसमें बिहार भी है, बंगाल भी है, असम भी है, उड़ीसा भी है, त्रिपुरा भी है, ये सेवन स्टेट कंट्रीज स्टेट्स भी है। ये सब होने उसके सिवा नेपाल भी थोड़ा जुड़ा हुआ और वेस्ट बंगाल भी जुड़ा हुआ। ये सब मिलाकर के एक जोन है। इतना बड़ा जोन, एक अमेरिका का पॉपुलेशन जितना है, एक अमेरिका जितना है वो उतना ईस्टर्न जोन है वास्तव में देखा जाए तो। इसके लिए आप सबको ये सच में चेताली भले बजाओ। इतनी जोन संख्या के हिसाब से मात्र नहीं है, सेवा के हिसाब से, देवताओं के हिसाब से, पूज्यता के हिसाब से, पवित्रता के हिसाब से, प्रत्यक्षता के हिसाब से ईस्टर्न जोन नंबर वन बनना चाहिए। इसके लिए आप सभी आए हैं मधुबन में, डायमंड हॉल में उपस्थित है। डायमंड हॉल अर्थात क्या है? डायमंड बेदाग हीरा, बेदाग डायमंड, एवर शाइनिंग डायमंड, एवर वैल्यूबल डायमंड। ऐसे डायमंड आत्मा बनेंगे डायमंड हॉल में आकर के। बाबा ने कहा था दिस इज अ स्पिरिचुअल एयरपोर्ट। बाबा ने कहा था सभी एयरपोर्ट है, परंतु ये कौन सा एयरपोर्ट है? आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए, परंधाम की यात्रा करने के लिए, इस दुनिया से दूसरी दुनिया तक जाने के लिए, यात्रा बनने के लिए, इसलिए स्पिरिचुअल एयरपोर्ट बाबा ने कहा था। ऐसे रूहानी यात्रा का एयरपोर्ट बन, ऐसे रूहानी यात्रा का करने के लिए इधर आते हैं तो ऐसे डायमंड बन करके निकलते हैं तो ऐसे डायमंड की वैल्यू कितनी है? बहुत खनिज संपत्ति भारत में भी है, दुनिया में भी है। डायमंड की वैल्यू किसी देश में जाओ, किसी काल में जाओ, किसी व्यक्ति के पास जाओ, उसका वैल्यू अपना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए एक एक आत्मा महत्वपूर्ण आत्मा है, दिव्य आत्मा है, अवतरित आत्मा है, अनेक जन्म लेने वाले आत्मा है, बाप समान बनने वाले आत्मा है। भले अभी नहीं है परंतु 100% बनेंगे, वो विश्वास होना चाहिए। हमारा इस साल का थीम है यूनिटी एंड ट्रस्ट, विश्वास और एकता। हम एक बाप के बच्चे हैं और एक बाप से विश्वास रखेंगे, एक से सब कुछ प्राप्त करेंगे। इस विश्वास से आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आप सभी विजयी माला में आएंगे। किसमें आएंगे? विजयी माला में, विजय रत्न बन करके आएंगे। आपके गायन इस सृष्टि में बहुत विधि पूर्वक पूजा होगी, विधि पूर्वक गायन होगा, विधि पूर्वक आपका शास्त्र बनेगा, विधि पूर्वक मंदिर बनेगा, विधि पूर्वक सर्व प्राप्तियों का सिद्धि होगा। ऐसा सिद्धि स्वरूप बनने वाले आत्माओं को प्रणाम, ओम शांति, नमस्ते। मेरा थोड़ा गला गड़बड़ है, मैंने वीरेंद्र भाई जी को रिक्वेस्ट करता हूँ आप आइए। वैसा खुद अपना शेयर कीजिए करुणा जी तब आने से पहले। आप बाबा के अनन्य रतन है वीरेंद्र भाई जी है, पहले चीफ कमिश्नर, अभी चीफ कमिश्नर आरटीआई का है वेस्ट बंगाल, इससे पूर्व में डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रह चुके हैं। बाबा के इतनी पोस्ट में रहते हुए डेली एक दिन भी मुरली मिस नहीं करते, इतनी बड़ी विशेषता आपका, आपके परिवार के साथ आए हुए बहन जी भी इधर ही उपस्थित है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपका अनुभव भी शेयर करें।
ओम शांति। शरीर का नाम वीरेंद्र है जैसे भाई साहब ने बताया, और ड्रामा अनुसार मुझे वेस्ट बंगाल,
गुप्ता जी भी है ना?
हाँ वीरेंद्र गुप्ता है, लेकिन मैं लिखता नाम सिर्फ वीरेंद्र हूँ।
अच्छा।
हरियाणा में ऐसा था आर्या समाज के अंदर कि एक ही नाम रखा जाए, तो हमारे फादर ने एक ही नाम रखा वीरेंद्र। और ड्रामा अनुसार मैं डीजीपी रहा वेस्ट बंगाल का, और आजकल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हूँ, आरटीआई आप लोगों ने सुना होगा, उसी का काम देखते हैं। मेरा ज्ञान में आना हुआ 2013 में, और ये मैं टीवी देख रहा था पीस ऑफ माइंड चैनल, उससे मुझे इसका ज्ञान मिला मुझे, और फिर मैंने टीवी फॉलो किया 1.5 साल तक, और उस 1.5 साल के दौरान मैंने जो है नॉन वेज खाता था वो छोड़ दिया, फिर सवेरे अमृत वेला करने लगा। तो पहले पुलिस में होने के कारण थोड़ा संदेह ज़्यादा होता था, तो मुझे संस्था पे भी थोड़ा सा पता नहीं था कैसा रहेगा, तो मैं जाने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा था, और फिर बाद में 1.5 साल के बाद शायद बाबा ने ही शक्ति दी, और फिर मैं 1.5 साल के बाद एल्गिन रोड कलकत्ता में, फिर मैं वहाँ जा करके मैंने योग करना शुरू किया। और इससे पहले इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यह है कि मैं 2013 में जुड़ा और 2015 से सेंटर जाने लगा, उससे 20 साल पहले 1994 में मैं माउंट आबू आया था, और मैं वहाँ पर हमारा 2 सप्ताह का एक वहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी एकेडमी है, तो वहाँ 2 सप्ताह का कोर्स था, तो उनका जो अच्छा संबंध था ब्रह्मा कुमारी के साथ, तो हमें वहाँ घुमाने ले गए, हम दादी प्रकाशमणि से मिले उन दिनों, तब तो इतना समझ में नहीं आया था, लेकिन अब मैं जब अवलोकन करता हूँ पुरानी बात सोचता हूँ तब मैं सोचता हूँ कितना भाग्यशाली हूँ कि दादी प्रकाशमणि से मिले थे उस समय। अच्छा, तो उन्होंने फिर पूछा कि भाई अब योग करेंगे, तो हमने कहा हाँ करेंगे, तो हम 2-3 अवसर जो है वो जो ओम शांति आपने देखा है, ओम शांति भवन की जो सीढ़ियाँ हैं जो फोटो दिखाते हैं, बड़ी मशहूर सीढ़ियाँ दिखती हैं वो, तो उसकी वो जो बीच में लैंडिंग है वहाँ पर बैठ के उन्होंने एक सिस्टर को दिया, और उन्होंने हमें 7 दिन कोर्स करने के लिए कहा, तो हम जाते रहे, पर वो शायद सिस्टर जो थी विदेशी थी, विदेशी का मतलब दुबई से थी शायद वो, तो वो जो है जैसे हम लोग इंडिया में ज्ञान सुनाते हैं बातें करते हैं, तो वो बात नहीं करती थी, तो उन्होंने बस यही कहा कि मेरे यहाँ देखते रहो, और किसी तरह से ऐसा कुछ भाग्य का वो हुआ कि, या ड्रामा अनुसार कहिए कि मुझे 7 दिन कुछ समझ में नहीं आया, और 7 दिन मैं वहाँ पर जो है माउंट आबू हेडक्वार्टर में शांति वन में बैठ करके मैं ओम शांति भवन में बैठ के सीखता भी रहा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, और 7 दिन के बाद हम लोग चले गए, और उसके 20 साल के बाद बाबा ने खुद ही पकड़ लिया और टीवी से समझ में आया मुझे, और उसके बाद तो फिर ये एल्गिन रोड पर कानन बहन जी इंचार्ज हैं वहाँ, तो उन्होंने ही जो है फिर उसके बाद उनकी पालना रही हर तरह से, और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस, जैसे आप सभी को प्रत्येक को भाई बहन को एक्सपीरियंस होंगे, तो मुझे भी बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हुए हर तरह का जो है, जब से मैं ज्ञान में आया उसके मैं 5 साल के बाद मुझे डीजीपी बनने का मौका मिला, तो उसमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, वो काम जो है बहुत जिम्मेदारी का था, एक तो मुझे सबसे बड़ा उसमें ये रहा कि जब मैं डीजीपी बना तो मेरा ये नहीं था कि मैं सबको सुपरवाइज कर रहा हूँ, मैं ये सोचता था कि ये जो 2 लाख की फोर्स है तो ये मेरा काम है स्टेट को ठीक रखना, और ये लोग मेरी सहायता कर रहे हैं, ना कि ये सोचना कि ये लोग अपना काम कर रहे हैं और मैं इन्हें सुपरवाइज कर रहा हूँ, तो इससे क्या था मैं हमेशा ग्रेटफुल रहता था उनको, मतलब हमेशा अच्छा फील करता था कि वे मेरी हेल्प कर रहे हैं, कोई कमी कमजोरी अगर है तो वो मैं सोचता था कि ये मेरे ही भाग्य के कारण कोई होगा, मेरा ही कोई पिछला वो होगा इसलिए ऐसा हुआ है, और ये तो जो ऑफिसर है बहुत अच्छी कोशिश कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, मेरे संबंध बड़े अच्छे रहे और मैंने सभी को हमेशा एंकरेज किया, किसी कमी अगर छोटी मोटी हो भी गई तो ठीक है, बाबा तो हमेशा साथ थे। कभी मुझे वहां पर रात को 2 बजे फोन आ गया सोते वक्त कि यहाँ कुछ गड़बड़ है किसी इलाके में, तो हो ही जाता है, इतना बड़ा स्टेट है, 10 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो मैं कलकत्ता कैपिटल में, कैपिटल कलकत्ता है, तो मैं वहां पर मैं जाग रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, और वहां ऑफकोर्स डिस्ट्रिक्ट में जहां पर या कमिश्नरेट में जहां प्रॉब्लम है तो कमिश्नर SP और उनकी फोर्स काम कर रही है। तो मुझे कभी ये दुख नहीं होता था, ये ज्ञान के कारण ये मेरी समझ में आया कि भाई मैं रात को जो काम कर रहा हूं तो मैं तो अपने लिए कर रहा हूं, बाबा मुझे भाग्य बनाने का मौका दे रहे हैं, इतने लोगों की मैं शांति के लिए काम कर रहा हूं, ये नहीं कि मेरी नींद खराब हो गई है, क्या डिस्टर्ब कर दिया, नो। तो ये बड़ा फायदा रहा, इससे इस एटीट्यूड जो चेंज हुआ इससे बहुत फायदा होता है। एटीट्यूड चेंज का सिर्फ यही नहीं कि व्यावसायिक रूप से या प्रोफेशनल उसमें फायदा हुआ, आपको अपने परिवार से, बच्चों को डील करने में और परिवार में भी, सब जगह हर संबंध में फायदा होता है आपको। आप जो है बच्चों को जो है, जैसे हम लोग सोचते हैं कई बार अपनी बात बताई बच्चों को, हम पेरेंट्स हैं बतानी ही होती है, मगर ये नहीं कि जो बता दिया तो वो उन पर जोर दें कि वो माने। अब तो यहां समझ में आता है ज्ञान में हमें कि जो हम बता रहे हैं वो बच्चों के समझ के अनुसार है, हमारा समझाना ठीक है उसे समझ में आ रहा है, लेकिन काम वो होगा जो ड्रामा अनुसार है। तो इसलिए आप जो हैं जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, नाराज नहीं होते और फिर से जो हैं शांत बने रहते हैं, इससे घर का जो वातावरण है वो ज्यादा अच्छा बनता है आपको, तो ये बड़ा फायदे का रहता है। इससे कई तरह के परिवर्तन आए, जैसे कि वो कहते हैं ना आपके अंदर के डर चले जाते हैं, क्रोध चला जाता है, तो मुझे क्रोध का भी काफी आता था, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो गया, अभी भी आता है, मगर उसकी जो है फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी
कम हो गया,
हाँ इंटेंसिटी कम हो गया है, ड्यूरेशन कम हो गया है, और क्रोध के बाद जो पश्चाताप होता है अब वो कम हो गया है। इसका मतलब ये नहीं मैं एरोगेंट हो गया हूँ कि नहीं नहीं मैंने कर लिया वो तो ड्रामा अनुसार, ये नहीं, ये मुझे मालूम है जो मैंने किया है गलत किया है, ये अब वापस आएगा, लेकिन अब फर्क है, अब बाबा मेरे साथ है। और दूसरा, मैं दोबारा से संकल्प को रिपीट करता हूँ मन में कि मैं शांत स्वरूप हूँ। तो धीरे 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 हमेशा ही पॉजिटिव परिवर्तन आ रहा है। एक बात और बताने की है, एक घटना मैं आपसे और शेयर करूंगा इससे पहले, कि एक बार मुझे एक प्लेन में जाने का मौका मिला, तो उसमें कुछ ऐसा घटना क्रम हुआ कि उसमें जो है आग लग गई, और आग लगी और वो जो है अब कुछ खास करने का था नहीं उसके अंदर, उस टाइम टेक ऑफ कर रहा था और मुझे ऐसा विश्वास हुआ कि अब जो है मृत्यु नजदीक है, मतलब नजदीक का मतलब मुझे लगा कंफर्म हो गया। तो हम लोगों ने तो यहाँ योग सीखा होता है, तो मैंने योग लगाने की कोशिश की और वो योग जो है लग गया, बाबा मुझे नजर आ रहे थे, नजर का मतलब मेरी विजुलाइजेशन में थे। तो मुझे उस टाइम चिंता ये नहीं हुई कि प्लेन का क्या होगा, वो मैं ज्यादा बात बढ़ा नहीं रहा, भाई बहन जितने और जो ट्रैवल कर रहे थे सब चिल्ला रहे थे, आवाज आ रही थी, सब डिस्टर्बेंस हो रही थी, मेरा योग लगा हुआ था। मैं बाबा से ये कह रहा था, बाबा जैसे आपने बताया है कि अंतमति सो गति, और अब ये तो बड़ी जो है अच्छी बात है कि लास्ट समय है और आप मेरे साथ हैं। मुझे चिंता उस टाइम ज्यादा ये थी कि आग की चिंता नहीं थी कि कहीं बाबा से मेरा योग ना टूट जाए। तो लेकिन ड्रामा अनुसार कुछ ऐसा हुआ कि 10-15 मिनट के बाद जो है वो प्लेन बच गया और उतर गया। तो यहां मैं ये नहीं रहा हूं कि मैं बच गया, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि मैं स्टेट ऑफ माइंड क्या था उस टाइम, जब आप श्योर थे कि कुछ समथिंग मतलब डेथ इमिनेंट है, मुझे श्योर था उस टाइम, तो उस टाइम स्टेट ऑफ माइंड क्या था। बाबा ने ये शक्ति दी है, बाबा ने ये निर्भीकता दी है, ये जो है पुलिस में होने से या किसी मतलब मैं वैसा नहीं था पहले, पर ये ज्ञान में आने से ये फर्क आया है, और सबसे बड़ी बात ये है। तो जो भाई बहन
देखो, एक के कारण योग से सारी लोगों को जीवन पुनर्जल मिल गया। बाबा कहते बच्चे आप सबको योगदान दो तो ऑटोमेटिकली उनको ताकत मिलेगा, आपका योग दूसरों को भी सेव करेगा। इसके लिए क्लासिकल एग्जांपल है, आग लगा हुआ परंतु प्लेन उड़ रहे हैं, वो खुद बाबा के योग में बैठे हैं, बाबा बाबा कह रहे हैं। देखो बाबा भी सेव किया, इनको भी सेव किया, सारी प्लेन में रहने वालों को सेव किया। दैट इज द वंडर ऑफ द मेडिटेशन योगा।
तो जो भाई बहन नए आए हैं, वैसे तो आप लोगों को ही पता होगा, पर मैं मेरे का जो एक्सपीरियंस ये है, एक्सपीरियंस क्या यही सत्य भी है कि आप जो हैं अपने मुरली और योग का बड़ा ध्यान रखें, और मुरली और योग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है योग। हम कहीं ऐसा ना करें, आजकल मैं देखता हूँ कई बार भाई बहनों को, शुरू में मैंने भी वैसे ये किया कि हम लोग बहुत यूट्यूब सुनते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो सुनना आसान होता है, उसमें हमारे मन को कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती ना, मन और बुद्धि को मेहनत करनी पड़ती है जब हम योग लगाते हैं, और जब हम लोग यूट्यूब पे सुनते हैं तो मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो आसान लगता है और हमारे लिए समझना भी आसान होता है। मगर ज्ञान जो है वो पूरा नहीं है, मतलब ज्ञान का मतलब सिर्फ सुन लेने से ज्ञान का वो काम नहीं चलेगा, इसका नाम है राजयोग। तो हमें योग सबसे इम्पोर्टेंट है, योग में कमी ना हो जाए, आप योग पर ज़्यादा जोर दें। तो मेरे सभी भाई बहनों से यही अनुरोध है जो स्पेशली नए हैं, वो किसी तरह से ऐसा ना हो कि सिर्फ सोचें कि हमने ज्ञान सुन लिया है, ज्ञान समझ लिया है, ये काफ़ी है। नहीं, बाबा भी कहते हैं कि आपको बाबा से जुड़ना है, योग का मतलब जुड़ना है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जुड़ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है बाबा, और बाबा से जुड़ना ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे किसी भी बहाने कैसे भी हम जुड़ें उनसे। तो मैं मृत्युंजय भाई का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आप सबसे आज बात करने का मौका दिया है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।
और भी किसी को कुछ पूछना है? बैठिए बैठिए, योग करें। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दिए, नहीं तो हम 5-10 मिनट योग करेंगे दूसरी क्लास शुरू करने से पहले।
उधर कोई पूछ रहे,
बोलिए क्या। थोड़ा नजदीक आके बताइए। आरटीआई में क्या आपका, आपके लिए पूछ रहे।
आरटीआई एक्ट आपको पता होगा, आप लोगों को, वो होता है कि आप एक सरकार ने
राइट टू इन्फॉर्मेशन,
सरकार ने सभी को अधिकार दिया है प्रत्येक नागरिक को कि आप सरकार से किसी भी बात के बारे में उनसे कोई इन्फॉर्मेशन या सूचना ले सकते हैं। तो आप जो पूछ रहे हैं कि मेरा उसमें क्या कंट्रीब्यूशन रहा, तो इसमें भी मेरा बाबा ने बहुत हेल्प की है। जो है एक तो यहाँ पर भी जो है मैं, इसमें सिंपल है, आर्बिट्रेशन का काम होता है, एक तरफ सरकारी अफसर होते हैं और एक तरफ जो है नागरिक होता है। वो कहता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मैंने मांगी थी, इन्होंने दी नहीं, तो सरकारी अफसर कहता है कि भाई कुछ कारण है शरण नहीं दे सकते, या मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है इतना ही देना संभव है, ज़्यादा नहीं। तो मैं ये डिसाइड करते हैं उसके अंदर कि ये ठीक है या नहीं, तो ये तो है ही। पर साथ में पहले क्या था, जब शुरू में मैं 3 साल पहले मैंने शुरू किया काम, तो मैं उसमें मैंने कहा गुस्सा आ जाता, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, तो आर्गुमेंट ज़्यादा होती थी उसमें कई बार, तो मुझे भी उसमें फिर मैं भी इन्वॉल्व हो जाता उसके अंदर, साक्षी दृष्टा नहीं रह पाते थे। तो धीरे धीरे मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं जो है ये फैसले कर तो रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में अपना जो है कंट्रोल खो रहा हूँ, और इससे मुझे बाद में अजीब सा लगने लगा कि हैवीपन लगता था, खुशी नहीं होती थी। तो फिर बाबा की बात याद आई कि हर चीज में मुझे खुश रहना है, कि ये देखना है कि मैं समझाऊं इनको, लेकिन ऐसा ना हो कि मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दायित्व ले लूं। तो मैंने फिर वही सोचा कि मैं जो है ये फैसला करते वक्त शांत रहूं और समझाऊं उनको जितना समझ सकता है, और अपनी आवाज़ ना मेरी तेज़ हो जाए, इसकी मैं कोशिश करता हूँ, और ताकि ये है कि बाद में मेरा फैसला तो वही रहना है हमेशा, चाहे मैं धीरे बोलूँ या तेज बोलूँ। और मैं जब डीजीपी था तब भी मुझे लोग कहते थे कि डीजीपी होने से नहीं है कि आप, सबको उम्मीद ये रहती है कि पुलिस में हैं बड़े अफसर हैं तो थोड़ा सा डांट डपट के चिल्ला के ऐसे काम, पर मैंने देखा जितना बाबा ने जैसे बताया है शांति से, आप वहाँ पर डीजीपी भी हैं पुलिस में भी हैं, लेकिन जितना शांति से बोलते हैं आपकी बात का उतना ही वेटेज ज़्यादा है। ऐसा नहीं चिल्लाना है आपको, डांटना है किसी को, आपसे घबराएं लोग नहीं, आप जितना आराम से रहेंगे तो वो फायदा। तो मैंने आरटीआई में भी फिर वही कोशिश की, और धीरे धीरे मैंने अपने को शांत किया कि अगर लोग तो जैसे वो जो नामानुसार वो तो जैसे मर्जी बोलेगा ही, वो तो इरिटेट करेगा ही, लेकिन मुझे शांत रहना है और अपनी बात जो मुझे कहनी है मुझे कह दी मैंने, वही फैसला है। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छा रहा, और आरटीआई का एक्सपीरियंस जो है बहुत अच्छा रहा है। और लेकिन उसके लिए भी जो मेन जो है ये मैं बाबा का ही आभारी हूँ कि बाबा ही ने हर समय गाइड किया है मुझे। वैसे तो एक बात और भी कहनी है मुझे, कि जो मुझे ये इम्पोर्टेंट पोजीशन मिली, पद मिले, इसका बाबा ने समझाया, बाबा के ज्ञान के अनुसार मुझे ये समझ में आया कि जो पोजीशन मिली है ये इसलिए नहीं मिली कि मुझे इसमें कोई एंजॉय करने के लिए मिली है, एंजॉय तो आदमी करता ही है, लेकिन मेन ये इसलिए है कि बड़ी पोजीशन इसलिए है ताकि आप लोगों की ज्यादा सहायता कर सकें, ज्यादा सेवा कर सकें, और जितनी सेवा करेंगे तो उतना आप ही को मेवा मिलेगा, भविष्य अच्छा रहेगा। तो ये एक नई बात समझ में आने से तो मैंने अपनी पोजीशंस का लोगों को हेल्प करने में ज्यादा कोशिश की, अफसरों से ज्यादा उनकी बातें सुन करके उनको अपनी टीम बना के रखा जाए, ये नहीं डांट डपट वो सब नहीं रहा। तो लोग मुझे वैसे डीजीपी के साथ से बाबा जी कहने लगे कई बार कि आप बाबा जी हैं, पर उससे लेकिन फायदा ही रहा, उससे जो है बहुत अच्छा फायदा रहा। और यही है,
मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। रिसेंटली जब महामहिम राष्ट्रपति लखनऊ में आए थे, उसमें काफी पुलिस ऑफिसर्स थे, उसमें एक कमिश्नर थे, तो सिटी के हेड वही होते हैं कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने सब ऑफिसर्स को बोला यहाँ ऊंची भाषा में नहीं बोलने का, यहाँ योग की स्थल है, ये तो श्वेत वस्त्रधारी लोग है, आपको आपने देखा कोई नहीं जोर से बात करते हुए, इन्होंने सचमुच वो पुलिस की भाषा ही चेंज हो गया था। हम लोग तो वही ड्रेस पहन करके जितने स्लो बात करते हैं उससे भी कम भाषा में, कम शब्दों में इन्होंने ये करना था। इट वॉज सो डिसिप्लिन, मैंने एक समझा इसमें, हम डिसिप्लिन में, कम भाषा में, कम प्रैक्टिस में रहते हैं, प्रैक्टिस में वातावरण भी ऑटोमेटिकली बन जाता, कोई भी वातावरण कितने भी टेंस वातावरण हो, एंग्जाइटी हो, वरी हो, कैसे हो सकता है, क्या करेगा, कुछ गड़बड़ हो गए तो हम सबका रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा उनको नहीं था। मैंने बोला यू एंजॉय हियर, यू फील मोर डिविनिटी हियर, यू फील मोर पीस हियर, यू हैव कम टू द पीस प्लेस, इसमें कोई आपको अनहोनी होने वाला का चांसेस नहीं है, हाँ आपका अटेंशन रखना चाहिए। मैंने देखा कि जहां ब्राह्मण परिवार के लोग 3 घंटा बैठना, क्योंकि राष्ट्रपति आने के बाद में 1-1.5 घंटा बैठना, उससे पहले भी 1.5 घंटा बैठना, 3 घंटा कंटिन्यूस, इतनी शांति के वातावरण था और वातावरण ही उनको अंदर चेंज लाता है। आपका साइलेंस पावर ट्रांसफॉर्म द एनवायरमेंट ऑल्सो, इसके लिए बाबा कहते हैं आपकी वृत्ति, आपकी स्मृति, आपकी स्थिति वायुमंडल को भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए ज्वलंत एग्जांपल मैंने अभी अभी देखा, बहुत ऐसे बहुत बार मैंने देखा, मुझे एक अनुभव, चंद्रबाबू नायडू पहले बार इधर जब अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश था उस समय चीफ मिनिस्टर के रूप में इधर आए, उन दोनों में अव्यक्त दावा मिलते थे, अव्यक्त दावा इधर से उर्ली चलाया, सामने सोफा में चंद्रबाबू नायडू, उनकी मिसेस और काफी लोग आए हुए थे, उन्होंने 5 घंटा बैठे थे सोफा में, इतना एक भी पुलिस इसमें नहीं था हॉल के अंदर, ना बाहर भी नहीं थे, पर इन्होंने बोला 5 घंटा इतनी साइलेंस में इस संस्था में भाई बहने बैठ सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं बैठ सकते। उसके तुरंत उसके बाद में उधर जाने के बाद 34 एकर जमीन दिया इस इंस्टीट्यूशन को, बढ़िया बात। उसके बाद में और एक, उन्होंने वाजपेयी बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे उन दिनों में, उन्होंने वाजपेयी को एक कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन के लिए बुलाया था, उन्होंने बोला सब ब्रह्म कुमारी इस परिवार के लोग आकर के इस प्रोग्राम को सक्सेस करना, कैसे यहाँ का बिठाने से लेकर के टोली डिब, हमारे पास टोली प्रसाद, वो लोग तो प्रसाद कहते हैं, विनियोग करने के लिए आप लोग, उन्होंने अंदर की इतनी बड़े सभा, एक भी लोगों को व्हाइट ड्रेस में व दूसरे ड्रेस में होंगे परंतु पुलिस दिखाई नहीं दिया, ब्राह्मण परिवार के लोग थे, माने ही वाज ही बिलीव दैट दीज पीपल कैन ब्रिंग ए पीस टू द सोसाइटी एंड ऑर्गेनाइज इन ए बेटर वे, बड़े प्रोग्राम को एक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आते हैं तो उस सेशन में वह उस गैदरिंग को बहुत व्यवस्थित तरीके से साइलेंस के रूप में, शांति के रूप में, डिसिप्लिन के साथ साथ, स्वच्छता के साथ साथ प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर सकता है। उन्होंने एक प्रोग्राम में इतना रियलाइज करके अभी तो बहुत मदद की, अलग बात है। मेरे कहने की भाव है वी कैन क्रिएट ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ऑन दिस बेसिस एंड दैट शुड बी repetitive activity. That's all. Okay, Om Shanti. अभी बाबा की याद में बैठेंगे क्योंकि ultimately हम तो silent में ही जाना है. इसमें silence में बैठना मना शांति को सारी दुनिया को देना. देना नहीं, देना लेता है तो बाबा से, देता है तो प्रकृति को. बाबा ने कहते हैं प्रकृति को भी पावन बनाना. इसके लिए इस समय प्रकृति भी हलचल में है. हम अचल हो जाएगा, प्रकृति भी चेंज हो जाएगा.
ओम शांति. एक बार एक हाथ की ताली से आदरणीय मृत्युंजय भाई साहब का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया. आपने हम सभी को मूल्यवान शब्दों के द्वारा, अनुभवों के द्वारा, सेवाओं के विस्तार का सारा ही सुंदर व्याख्यान दिया.